والسلام معلم لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. ये आखिरी क्लास जो होती है आज के दिन की, ये सीरत सहाबा या खुलफाए राशिदीन वाली क्लास होती है, और इसमें हम आखिरी खलीफा राशिद यानी हजरत अली करम अल्लाह वजहू के बारे में बात कर रहे हैं। आखिरी वाक्य अगर किसी को याद हो जल्दी से कोई बता सके तो जी खान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मवाक़ात यानी भाईचारा कायम किया था, तो हर एक मुहाजर को एक अंसारी का भाई बना दिया था, लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो अपना भाई बनाया। ठीक है, तो ये भी अली रज़ी अल्लाह तआला की एक बड़ी खसूसियात में से एक खसूसियत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको पसंद फरमाया अपने भाईचारे के लिए, अपने मवाक़ात के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर खेल कूद तो नहीं भाई क्लास के अंदर, ये तो बड़ी बड़ी बात है यार। क्या यार, पता चलिए आप कर रहे हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, तो इसके बाद एक और वाकया करके फिर हम ये प्रोजेक्टर के इस्तेमाल पे अगर टाइम हो तो चलाएंगे। वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल विदा पर गए, ठीक है, हज्जतुल विदा नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी हज, ठीक है, कुछ रिवायात के मुताबिक पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 2 हज किए थे, कुछ के मुताबिक 4 हज किए थे, ठीक है, लेकिन ये हज बहरहाल आखिरी हज था, हज्जतुल विदा। ये कौन से वाले साल में हुआ था, किसी को याद है? हज्जतुल विदा का साल 10 हिजरी में, ठीक है, बस नबी अलैहिस्सलाम की वफात से चंद दिन पहले कही ये वाकया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे तशरीफ ले गए, वो हम पीछे सीरत में काफी तफसीलात इसकी पढ़ चुके हैं। तकरीबन किताबों में लिखा है 1,24,000 सहाबाए कराम जो थे इस हज के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे। अभी भी हम हज के ही अयाम के अंदर हैं, आज गालबन 4 या 5 ज़िलहज्जा है, तो बिल्कुल करीब हैं हज के दिन शुरू होने वाले हैं। 9 अरफा को अरफात का दिन होता है, 9 ज़िलहज्जा को अरफात का दिन होता है, 8 को जो है वो मिना में लोग पहुंच जाते हैं, 7 से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब हज के ऊपर तशरीफ ले गए ना, तो हजरत अली, क्योंकि हम अब हजरत अली रतान के बारे में बात कर रहे हैं, तो अली रतान जो थे वो उन दिनों कहाँ पर थे? यमन में, ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रतान को यमन का वाली बना करके या गवर्नर बना करके भेज दिया था। तो अली रतान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज भिजवा दिया था कि तुम भी आ जाओ हज के ऊपर, ठीक है, तो वो फिर यमन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर के मिले, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अजान से पूछा कि अली बिमा अहललता, ठीक है, यानी तुमने कैसे अपने आप को हलाल किया है, यानी एहराम तुमने कौन सी वाली, कौन सा वाला एहराम बांधा है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ को पता होगा आप में से कि एहराम की, हज के एहराम जो बांधते हैं ना, उसकी 3 नियतें होती हैं, 3 तरह के एहराम बांधे जा सकते हैं, वो एहराम बांधने का तरीका एक ही होता है, ठीक है, लेकिन नियतें 3 होती हैं। एक नियत होती है कि आप हज्जे किरान का एहराम बांधें, और तीसरी दूसरी नियत होती है कि आप हज्जे तमत्तु का एहराम बांधें, और तीसरी क्या होती है, हज्जे इफरात का एहराम बांधें, ठीक है। उम्रे में कोई 3 उम्रों की किस्में नहीं होती, उम्रा एक ही किस्म का होता है बस, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नहीं होते कि फलाने उम्रे का एहराम बांधे या फलाने उम्रे का एहराम बांधे, लेकिन हज 3 किस्म का होता है जी। मतलब क्या होता है, बिल्कुल पता, मतलब भी तो थोड़ा बहुत बताने वाले थे, अभी ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब ये होता है कि हज्जे किरान का अगर आपने एहराम बांधा है, तो इसमें ये करना होता है कि पहले जाकर के उमरा करना होता है, ठीक है, और उमरा करने के बाद जो है ना, आप एहराम उतारते नहीं है, ठीक है, एहराम की पाबंदियों से निकलते नहीं है, बल्कि उसी एहराम के अंदर ही फिर आप मिना चले जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं हज को, ठीक है, मिना जाते हैं, फिर अरफा जाते हैं, फिर मुजदलफा जाते हैं, फिर रमी करते हैं, फिर उसके बाद जब आप कुर्बानी करते हैं, फिर उसके जब आप बाल कटवाते हैं, फिर एहराम उतार, ठीक है। तो ये हज्जे किरान ईरान के अंदर ऐसे होता है, ठीक है, यानी एक ही एहराम में आपने उमरा करना होता है और कंटिन्यू करते हुए आपने हज करना होता है, बिल आखिर मार कटवा करके एहराम से आप बाहर निकलेंगे। ये हज कुरान की तारीफ है। हज तमत्तो क्या चीज होती है कि आप जब जाहिर है मीकात क्रॉस करते हुए यू हैव टू बी इन एहराम, एहराम तो आपने बांधना ही है, तो आपने एहराम बांध लिया, लेकिन हज तमत्तो की अगर आपने नियत करी है तो फिर आप पहले मक्का मुकरमा जाएंगे, वहां जाकर के उमरा करेंगे, उमरा करके जैसे हम उमरा करने के बाद बाल कटवाते हैं और आप एहराम के पाबंदियों से बाहर निकल आते हैं, ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और वो बाल काटने की ऐसी कोई पाबंदियां नहीं रह जाती हैं। तो हज तमत्तो में उमरा करके एहराम से फिर आप बाहर निकल आते हैं, फिर उसके बाद जब आप मिना जाने लगते हैं ना, तो उससे पहले आप फिर एहराम दोबारा से अपने शुरू कर लेते, एहराम की पाबंदियों में फिर से दाखिल हो जाते हैं। वही मर्द हजार जो है वो बगैर सिली भी चादरें पहन लेते हैं, औरतें जो है वो अपने नॉर्मल लिबास में होती हैं, ठीक है, लेकिन एहराम की बाकी पाबंदियां उन पर भी होती हैं, और इस तरह से फिर वो हज करते हैं और फिर हज खत्म करके फिर वही बाल कटवा करके फिर वो ऐसे आराम से निकलते हैं। नहीं, फिर मीकात वापस नहीं जाना होता, बल्कि जहां पर आप है ना मक्का मुकरमा में उमरा करने के बाद आपने एहराम अपना खत्म कर दिया, तो जहां भी आप ठहरे हुए हैं शिक्का मफरूशा में या होटल के अंदर या किसी दोस्त के घर पे, वहीं से फिर आप एहराम बांध करके फिर मिना के लिए रवाना होता है, ठीक है। और हज इफरात क्या होता है, हज इफरात के अंदर आप बस डायरेक्ट मीकात से एहराम बांधते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, मिना पहुंच जाते, ठीक है, मिना के टेंट में जो भी आपका तो वहां पे इंतजाम है वहां पे रहते हैं, फिर जब 9 होती है तो अरफात चले जाते हैं, फिर घर आके बाल कटवा करके फिर आप उस एहराम से निकलते हैं। तो हज इफरात जो है ना उसके अंदर उमरा है ही नहीं, ठीक है, और एहराम बस हज ही का आप एहराम बांधते हैं। ये तीन तीन किस्म के हज होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अली अदान से पूछा कि अली तुमने कौन से वाले हज का एहराम बांधा है, ठीक है, तो अली अदान ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो बस ये दुआ मांगी थी कि जो नियत आपने करी है ना वही मेरी भी नियत है, राइट, जो आपकी नियत है वही मेरी भी नियत है, तो आपकी क्या नियत है, नबी अलैहिस्सलाम की क्या नियत थी, कुरान की ना, ठीक है, जो तुम बता पे कुरान की नियत थी, तो अली अदान की भी कुरानी की नियत हो गई, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम बहरे खुश हो इस बात पे कि अच्छा कितनी अच्छी उन्होंने दुआ मांगी कि जो मेरी नियत हुई तुम्हारी नियत। अच्छा, फिर नबी साहब ने पूछा कि क्या तुम अपने साथ कुछ कुर्बानी के जानवर भी लेकर के आए हो, क्योंकि उस जमाने में कुर्बानी के जानवर लोग साथ लेकर के जाते थे, मक्का मुकरमा में तो आज जैसा इंतजाम नहीं होता था ना। तो अली अदा ने फरमाया कि जी नबी साहब मैं अपनी कुर्बानी के लिए भी लेकर के आया हूँ और आपकी कुर्बानी के लिए जानवर लेकर के आया, ठीक है। अब वो कितने थे उसकी तादाद तो मैं नहीं देख सका, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी करी, 100 कैमल्स, ठीक है, तो 100 कैमल्स की कुर्बानी किस तरह से करी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 63 ऊंट जो है ना वो तो खुद अपने हाथ से नहर किए। नहर करने का मतलब क्या होता है, ऊंट को नहीं जबा करना नहीं, बल्कि खंजर जो है ना वो उसकी गर्दन में ऐसे मारना कि उसकी गर्दन में सफिशेंट एक सुराख हो जाए, उसमें से फिर वो खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, खून बहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल जैसे एक नाले में से पानी बह रहा है उस तरह से खून बहता है। और ऊंट जो है ना पहले तो खड़ा रहता है क्योंकि बस खड़े खड़े उसकी गर्दन के अंदर आप खंजर मारते हैं, फिर बिलाखिर इतना खून बह जाता है कि वो बहुत कमजोर हो जाता है, फिर आखिर फिर वो उसकी टांगे उड़ती हैं, वो बैठता है, गिरता है और फिर उसकी जान निकल जाती है। तो इस तरह से ये नहर का तरीका होता है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, नहीं इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, वन्हर तो वो नहर का हुक्म उसी के अंदर है, सूरह कौसर के अंदर। अच्छा, तो 63 को नबी अलैहि सलाम ने अपने हाथों से नहर किया और बाकी कितने बच गए, 37, तो 37 को फिर नबी अलैहि सलाम ने अली अदान को हुक्म दिया अब तुम इन सबको नहर करो। तो अली अदान ने नबी अलैहि सलाम के ऊँट, ठीक है, जो थे वो अपने हाथों से नहर किए, उसके ऊपर वो बड़ी अपनी सआदत समझते थे कि मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊँटों को ज़बह करने का या नहर करने का मौका मिला, ठीक है। तो हजरत अलविदा का मौका, 63 ऊँट नबी अलैहिस्सलाम ने ज़बह किए, तो कोई इसके अंदर हमें हिकमत या कोई इशारा नजर आता है, 63 क्यों, 65 क्यों नहीं, या जो है वो 50 क्यों नहीं, आपने भी बताया। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने कितने सारे इशारे उम्मत को दे दिए थे कि बस अब मेरे जाने का वक्त आ गया, ये मेरा आखिरी साल है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये भी उन इशारों में से एक इशारा था कि मेरी उम्र टोटल 63 साल होगी, 63 ईयर्स होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो मैं 63 ऊँटों की कुर्बानी कर रहा हूँ, गोया के हर साल के, अपनी उम्र के हर साल के लिए एक जानवर कुर्बान कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक और वाकया कि एक दफा नबी अलैहिस्सलाम से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए आए। ठीक है, वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला के घर में नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आई, क्योंकि उनको पता होगा कि इस वक्त जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर में होंगे, हुजरे में होंगे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हुजरा होता था लेकिन बीवियों के नाम पे होता था। तो नबी अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे, तो वापस चली गई। जब नबी अलैहिस्सलाम घर वापस आए तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बताया कि फातिमा आपसे मिलने के लिए आई रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आप हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में चले गए। ठीक है, और हुजरे का जो दरवाजा होता, दरवाजा तो कोई फिजिकल डोर होता ही नहीं था, बल्कि पर्दे पड़े हुए होते थे टाट के, यानी लेदर के मोटे टाइप के ना, इस तरह के जो है वो पर्दे पड़े होते थे। बस आप सरसरम के अंदर बेटी ही थी और दामाद ही थे और पता था कि कोई और नहीं है। आप सरसरम जो है वो घर के अंदर दाखिल हो गए। जब हुजरे के बाद, यानी दरवाजे के बाद एक सहन होता था, हम आजकल लाउंज भी कह देते हैं, तो सहन होता था ओपन एयर। फिर उसके बाद हुरफा होता था, यानी कमरा, ठीक है, जिसको कि आप बेडरूम भी कह सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जब वहां गए ना, तो हजरत आयशा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जो है ना, उसके बाद आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम जा करके बैठ गए, इस तरीके से उन दोनों के पैरों के पास बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैर जो है, अली रज़ी अल्लाह ताला बताते हैं कि वो मुझसे टच हो रहा था, और एक पैर जो है वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से टच हो रहा। ठीक है, इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ जा करके बैठ गए, और फिर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछने लगे कि फातिमा आप आई थी, तो आप किस लिए आई थी, क्या वजह थी। तो अच्छा, ये भी लिखा है कि आप जैसे हम जब बैठे ना, तो वो लोग एकदम से जैसे आप हड़बड़ा करके उठ जाते हैं, कहते हैं कोई बड़ा करके बैठे तो बच्चे तो उठ जाते हैं ना अदब में। वो लोग भी जब उठने के लिए जैसे हिलने लगे, तो नहीं, तुम लोग जैसे लेटे हो ना वैसे ही लेटे हो, ठीक है ना, डोंट मूव। ठीक है, तो ये आपसे सुन के कोई एक मुहिबाना अंदाज था। तो आपसे सुन बैठ गए और फिर पूछा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। फरमाया कि जी अब्बा जान, मैं आपसे इसलिए मिलने के लिए आई थी कि अब माशाल्लाह फतुहात हो रही है, फलानी जगह से मुसलमान फतह, कोई जगह फतह करते हैं तो बहुत सारे गुलाम आते हैं, बांदियां आती हैं, बैतुल माल के अंदर बहुत सारा माल आता है। तो मैं ये दरख्वास्त करने के लिए आई थी कि मेरे घर में जो है ना, वो बहुत सारा मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है, और मेरे पास कोई सर्वेंट नहीं है, कोई खादिम नहीं है, कोई बांदी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, तो सारा काम मैं खुद ही कर रही होती हूँ ना, तो मेरे हाथों के अंदर गिट्टे पड़ गए। गिट्टे होते हैं, हार्ड हो जाती है आपकी, ठीक है, आपकी जो फिंगर्स के दरमियान की जगह होती है और हथेली होती है, इसमें ना बहुत सख्त हो जाती है वो जगह, जैसे एज के उसके अंदर कोई पत्थर आ गया, उसके अंदर हार्ड हो गया। तो मेरे हाथों में काम कर कर के उस जमाने में चक्की पीसती थी ना खवातीन घर के अंदर, क्योंकि आटा हमारी तरह तो नहीं, हम तो चक्की से आटा खरीद के ले आते हैं, या जो और पैकेज आता किसी स्टोर से खरीद के ले आते हैं, लेकिन उस जमाने में जो गंदम आती थी कट करके बाग से या खेत से, तो उसमें से जो है वो बालियों को अलग करना होता था, फिर उनको पीसना होता था। पीसते किसने किसमें थी, वो चक्की में पीसती थी, तो वो बहुत ज्यादा, यानी फिजिकली जो है ना, चक्की पीसना यानी कंज्यूमिंग किस्म का काम होता था, ठीक है, बहुत मेहनत लगती थी उसके अंदर, बाजुओं के अंदर मेहनत लगती है, ऐसे कैसे। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मर्दों को कौन से खेल खेलने चाहिए। ठीक है, आपको पता है ना नबी साहब क्या फरमाया, चीज बताएं। एक तो आर्चरी, तीर अंदाजी, ठीक है, फेंक के मारने वाला, जिसमें कि आपकी एमिंग बनती है, एमिंग। दूसरा क्या बताया आपने, फरमाया घोड़सवारी, ठीक है। तो घोड़सवारी जो जिन्होंने आप में से की है वो जानते हैं कि घोड़सवारी करना कितना मुश्किल काम होता है, अपने आप को घोड़े के ऊपर बैलेंस रखना, ठीक है, क्योंकि आप फिसलते रहते हैं इधर या इधर। हम तो कुछ नहीं कर रहे होते, खाली पकड़े हुए होते हैं ना, ऐसा लगता है इधर गिर जाएंगे या इधर गिर जाएंगे, और घोड़ा चल रहा होता है उसमें। वो लोग तो घोड़े के ऊपर बैठते थे और साथ साथ जो है वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे होते थे, घोड़े को अलग कंट्रोल कर रहे होते थे, और तलवारें और नेजे और तीर कमान और ढाल, और बंदा भी मार रहे हैं अपने आप को भी बचा रहे हैं, कैसे करते थे। तो घोड़सवारी जो है ये भी एक बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट वाला काम होता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या फरमाई, जो आप कल करके आए हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो गए थे स्विमिंग वगैरह आप लोगों ने करी माशाल्लाह, आपको अंदाजा है कि स्विमिंग जो है ना ये एक ऐसा स्पोर्ट है, ऐसा काम है कि जिसमें आप 100% आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, आपका जिस्म का एक एक जुज जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फुटबॉल के अंदर लात इन्वॉल्व होती है आपकी, पैर पैर से मार रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, ठीक है। हॉकी खेल रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी कमर इन्वॉल्व होती है, पैर इन्वॉल्व होते हैं, और बस हाथ थोड़े से इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह से बैडमिंटन के अंदर कुछ और कराटे के अंदर कुछ। और स्विमिंग में आपको करना क्या होता है, स्विमिंग का मकसद क्या होता है, स्विमिंग का मकसद क्या होता है, डूबने से बचाना, माशाल्लाह, बिल्कुल 100% कॉम्प्रिहेंसिव जवाब, डूबने से बचना, ठीक है ना, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसमें हम सरवाइव नहीं कर सकते, इंसान नहीं सरवाइव कर सकते, हमारे पास गिल्स नहीं है, हमारे पास लंग्स हैं, और लंग्स जो है ना वो एयर में ब्रीथ कर सकते हैं, पानी में ब्रीथ नहीं कर सकते। तो स्विमिंग में आपको सरवाइव करना है, सर्वाइवल, उसके लिए जो आपको एफर्ट डालनी होती है ना, यानी गए तो गए, ठीक है ना, या आर या पार, बच गए वरना तो दुनिया से चले गए। स्विमिंग ऐसी चीज है, दुनिया से ही चले जाने वाली चीज है, एकदम यूं करके, ठीक है। तो स्विमिंग कितना एक्सर्टिंग, यही लव मुझे नहीं आ रहा था पहले, एक्सर्टिंग किस्म का स्पोर्ट होता है, लेकिन नबी अकरम ने फरमाया कि मर्दों को स्विमिंग, घुड़सवारी और आर्चरी, ये उनके बेहतरीन खेल है। औरतों के लिए पूछा गया, औरतों के लिए कौन सा अच्छा खेल है, नबी ने फरमाया चक्की पीसना, स्विमिंग करना नहीं, चक्की पीसना, ठीक है। तो चक्की पीसना भी इतना एग्जर्टिंग है जिसको कि यानी औरतें, औरतों का जो अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर बनाया है वो उसको वो हैंडल कर सकती है, ठीक है, और वो भी अच्छे खासी एक्सरसाइज होती है औरतों के लिए, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम से हमें डायरेक्शन मिल गई कि मर्दों को फिजिकली कितना ज्यादा एक्टिव होने की और कितना ज्यादा एग्जर्टिंग होने की जरूरत है, और औरतों को फिजिकली इस तरीके से एग्जर्टिंग जिस तरह से मर्दों को होने की जरूरत है औरतों को नहीं है, ठीक है, औरतों के लिए डिफरेंट। हालांकि औरतों के लिए भी स्विमिंग करवाते हैं, हाँ भी पर्दे में तुम भी स्विमिंग कर लिया करो, ठीक है ना, या दूर दराज जाकर के, क्या उस जमाने में घरों में वॉशरूम्स नहीं होते थे, ठीक है ना, उस जमाने में वॉशरूम्स किधर होते थे, दूर दराज कहीं नहीं वॉशरूम्स होते ही नहीं थे, मर्दों के लिए नहीं औरतों के लिए भी नहीं होते थे, ठीक है ना। तो जो औरतें वॉशरूम जा सकती हैं इतना दूर, वहां पे स्विमिंग करने के लिए नहीं जा सकती किसी पॉन्ड में, और आपस में जो है वो 10-12 औरतें जो है वो इकट्ठी होकर चली जाए वहां जाकर के स्विमिंग कर लें, ठीक है, नहीं औरतों के लिए नहीं, घर में चक्की पीस। एग्जर्ट तो तुमने करना है, तुमने भी अपने आप को फिट रखने के लिए एग्जर्ट करना है, लेकिन नॉट द सेम वे एज मेन, ठीक है ना, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो आयशा सिद्दीका तन और दूसरी सहाबियात जो है वो चक्की पीसा करते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि आयशा मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज ना बता दूं कि जो घर में खादिमा होने या बांदी या गुलाम होने से ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद, ठीक है। तो आयशा फातिमा जहां ने फरमाया कि जी अब्बा हुजूर बताइए, जरूर बताइए। तो फरमाया कि तुम नमाज के बाद 33 टाइम्स सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, और 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 34 टाइम्स ला इलाहा सॉरी अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ठीक है, 33 33 34, ठीक है, ये तस्बीहात तुम पढ़ लिया करो, तो ये फिर तस्बीहात फातिमी के नाम से मशहूर हो, तस्बीहात फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, और फातिमा जहरा उसको करना शुरू हो गई, और उस वक्त फातिमा जहरा को कोई हेल्पर कोई सपोर्टर नहीं मिला। किताब में ये पढ़ा है कि बाद में एक मिल भी गया था, ठीक है, या कोई बांदी वगैरह मिल भी गई थी, लेकिन इस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने तस्बीह दे करके बता करके फातिमा जहरा को वापस कर दिया, ठीक है। और उनकी जो ख्वाहिश थी या उनकी जो डिमांड थी उसको आप सर ने पूरा नहीं किया।
कभी कभी दूसरे स्पोर्ट्स में भी चोट लग जाती है, फुटबॉल
चोट लग जाती है, चोट लगना एक अलग बात है, चोट तो आपको लग सकती है, चोट का क्या करना, चोट तो चोट का तो इससे ताल्लुक नहीं कि भाई कोई ऐसा स्पोर्ट ना खेलो जिससे कि तुम्हें चोट लग जाए, ये नहीं है, ठीक है, चोट तो लग सकती है, जो आपके जायज स्पोर्ट्स हैं वो आप खेल सकते हैं, ठीक है, चोट तो स्विमिंग में भी लग सकती है, चोट तो चक्की पीस में भी लग सकती है, अच्छा बस ये है कि कोई बेवकूफ़ी का स्पोर्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, गाड़ियां जो चलाते हैं इस तरीके से ड्रिफ्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है, दबाव को जो है वो इस तरह से उल्टे सीधे तरीके से यूं कर रहे हैं यूं कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें भी चोट लग सकती है, सही है, उसमें भी मर सकते, भाई स्विमिंग में भी मर सकते हैं और ड्रिफ्टिंग में भी मर सकते हैं, तो क्या ड्रिफ्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि चोट तो फिर स्विमिंग में भी लग सकती है, और स्विमिंग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ड्रिफ्टिंग जो है वो उसमें भी चोट लग सकती है, नहीं, जो बेफायदे के खेल है ना जिससे कि आपको फायदा नहीं हासिल हो रहा उसके अंदर जो आपको चोट लगेगी ना, तो वो चोट जो है वो अल्लाह की सजा कहलाएगी, वो चोट अल्लाह ताला की तरफ से सजा कहलाएगी, और जो आप फायदे वाली चीज खेल रहे हैं उसमें जो चोट लगेगी वो चोट अल्लाह की सजा नहीं कहलाएगी, अल्लाह ताला की तरफ से सजा नहीं बनेगी आपके लिए, ठीक है।
कभी कभी कोई गलत काम भी नहीं कर रहे होते तब भी अल्लाह ताला चोट लगा देते
हाँ कोई गलत काम नहीं कर रहे होते तो अल्लाह ताला उसमें उस फिर भी कभी चोट लगवा देते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए लगवाते हैं, वो किस लिए लगवाते क्यों लगवाते हैं, क्या क्या अल्लाह ताला को पड़ी हुई है कि आपको चोट लगवाए, टेस्ट
करते हैं।
करते हैं, है? गुनाह धुलने के लिए, माशाल्लाह है, मोमिन को जब चोट लगती है तो उसका गुनाह बख्शा जाता है, माफ होता है, और अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं कि हम चोट लगने के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़ लेता है वो उस टेस्ट में पास हो जाता है और जो नहीं पढ़ता वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, और भी
अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह
ताला हमें चोट भी जाते हैं और टेस्ट करने के लिए हमें कि हम फिर भी शुक्र अदा करते हैं फिर नहीं करते हैं।
जी, हम फिर भी शुक्र अदा करते हैं कि नहीं करते, और फिर भी हम जो अच्छे काम है जायज काम है वो कंटिन्यू करते हैं, या चोट से डर करके अच्छे कामों को छोड़ देते हैं, ये भी तो एक टेस्ट है ना, अच्छे कामों को आपने छोड़ दिया, भाई मुझे चोट लगी थी अब मैं नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा कोई अच्छा काम, ठीक है, तो ये भी तो एक टेस्ट है ना, इस टेस्ट में वो पास हो जाते हैं जो कि चोट लगने के बावजूद अच्छे काम करते रहते हैं, और इसको सब्र करना भी इसी को कहते हैं। अच्छा तो फातिमा ताना जो है ना उनको नबी अलैहिस्सलाम ने ये वजीफा अता फरमा दिया, इसको कहते हैं वजीफा, वजीफा का मतलब क्या होता है कि समथिंग दैट यू डू रिपीटेडली, ठीक है ना, जो चीज आप बार बार कॉन्स्टेंटली करते हैं कंसिस्टेंटली करते हैं उसको वजीफा कहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा फातिमा जहरा को एक वजीफा अता फरमा दिया, ठीक है, इस वजीफे से क्या हुआ फातिमा जहरा को फायदा क्या हुआ भाई, क्या इसको ये कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फातिमा जहरा को टाल दिया, वो तो कहते ना कभी कि जो वो मांग रही थी वो तो दिया नहीं, बस ऐसे ही टाल दिया, कुछ लोग कहते हैं चलता कर दिया बस, या बहाना बना दिया ना उस बिल्ला, इस किस्म का कर दिया, क्या नहीं फातिमा सुल्तान को कोई फायदा नहीं हुआ ऐसे, या फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, अच्छा ये अगर कोई जवाब दे मुझे नजर तो कुछ आ नहीं ना, मैंने किसी ने इसको मैं रोमांच में जा रही है लोग यहाँ पर वॉइस पहली की बात है। तो क्या फायदा हुआ? सॉरी, ऑनलाइन बच्चों से आदत के साथ के आपके कैटून तो देख नहीं पा रहे थे, क्या फायदा हुआ? इससे वो थकती नहीं, तो नहीं थकती। ड्रैग रेसिंग ड्रिफ्टिंग जवाब है, थकती नहीं चल की टायर्ड। तो जो थकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो थक नहीं है? इसका मतलब ये होता है कि वो ताकतवर है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, राइट? तो इस वजीफे से फातिमा जहरा को फायदा क्या हुआ कि इससे उनको रूहानी ताकत मिली, ठीक है? इससे उनको रूहानी, उनकी जो रूह थी ना, वो ताकतवर हो रही थी। और जब रूह ताकत होती है ना, तो उससे फिर जिस्म के अंदर भी एक ताकत आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मसल स्ट्रांग हो जाते हैं और जो है वो इंसान मोटा हो जाता है या लंबा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। जिस्मानी ताकत का मतलब ये नहीं होता, बल्कि क्या होता है जिस्मानी ताकत का मतलब? इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जिस्मानी ताकत का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है उसके लिए स्टेमिना, ठीक है? उसके अंदर स्टेमिना आ जाता है ज्यादा काम करने का, ठीक है? तो वजीफे के जरिए से उनको रूहानी ताकत मिली, और रूहानी ताकत के जरिए से उनको इतना स्टेमिना मिल गया कि वो घर के काम काज जो है वो कंटिन्यू कर सके, ठीक है? तो ये रूहानी ताकत पर हमें जो मिलती है वो कैसे मिलती है? वो हमें नफली आमाल करने से मिलती है, ठीक है? ये जो वजीफा नबी सर फरमाया था ना, बताया था ना उनको, ये कोई फर्ज नहीं था उनके ऊपर, ये कोई वाजिब नहीं था उनके ऊपर, ठीक है? जैसे कि ईमान भाई भी आपको पिछली क्लास में बता रहे थे, ये मुस्तहब अमल था या मुस्तहब अमल था, ठीक है ना? समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अल्लाह लव, या वो अमल के जिस अमल के जरिए से अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब करते हैं, ठीक है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं, मेरा बंदा नफली आमाल करता है और करता है, यहां तक कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे कि वो काम करता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हदीस के एग्जैक्ट अल्फाज समझ आते हैं, लेकिन इस तरह के अल्फाज है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नफली आमाल के जरिए से मेरे करीब होता है, हत्ता कि मैं उसके आंख आंख बन जाता हूँ, हत्ता कि मैं उसके, क्या मतलब है? अल्लाह ताला नाउज बिल्ला हमारी आंखों में तो थोड़ी आ जाते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये होता है कि हमारी आंख के अंदर रूहानी ताकत आ जाती है, हमारे कानों में रूहानी ताकत आ जाती है, हाथ पैर में रूहानी ताकत आ जाती है, ठीक है? और फिर हम आंखों से वो चीजें देख सकते हैं जो कि और कोई नहीं देख सकता, ठीक है? लोग, सबके पास आंखें होती हैं, वो भी देख रहे होते हैं, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा होता, समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? जिसको रूहानी ताकत मिल जाती है आंख में, उसको समझ में भी आ रहा होता है कि क्या हो रहा है।
से भी बेहतर एक चीज होती है जो बंदे के साथ अल्लाह आ जाता है।
इसी को अल्लाह की माहियत बन जाना भी इसी को ही कहते हैं कि बंदा असल के साथ अल्लाह ताला साथ नहीं चल रहा होता, ठीक है? तो ये ताकत मिल जाती है, अब उसके अंदर हर चीज के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है, देखने की भी, सुनने की भी, समझने की भी। दिमाग भी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी दिमाग की रूहानी ताकत को बढ़ा देते हैं, अब उसको जो है वो चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है? ये सब कैसे होता है? ये नफली आमाल के जरिए से होता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, वो क्या? कि और लोग बताएं, नफनी अमाल के जरिए से रूहानी ताकत मिलती है, लेकिन इसमें एक चीज जो कि बिल्कुल एसेंशियल शर्त है इसके लिए वो, और फिर एक दूसरी भी चीज है वो, कोई पहली चीज बताया चले जाए फराइज को, आप रेहान क्या कह रहे थे, ठीक है? कि नफली अमाल जो है वो हमने फराइज को पूरा करने के बाद करना है, ठीक है? ये नहीं करना है कि हम फराइज को छोड़ें और नफली अमाल करें कि हमें जो है वो अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी ये मिसाल बहुत सादा सी मिसाल है कि पांच नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो इशराक की नमाज नफिल है, तहज्जुद की नमाज नफिल है, और चाश्त की नमाज नफिल है, और अवाबीन की नमाज नफिल है, ठीक है, या सलातुत तस्बीह नफिल है। अब कोई शख्स जो है ना वो फजर की तो पाबंदी नहीं कर रहा, लेकिन चाश्त बड़े पाबंदी से पढ़ रहा है, मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, मुझे रूहानी ताकत मिलेगी, ठीक है ना, तो फजर कजा करने के साथ अगर आप चाश्त पढ़ें, तवाबीन पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, ठेंगा मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, कोई रूहानी ताकत नहीं मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, क्योंकि फर्ज जो है ना इसको करने के बाद नफली अमाल करने से फायदा होगा, वरना नहीं फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है, और फिर जो हमने एक्चुअली ड्रॉ करके समझाना था वो तो रह गया जी।
जब पेशाब करते हैं
भी है हदीस के अंदर भी है ये, तो फराइज पूरे करने के साथ जो नफली अमाल किए जाते हैं उससे भी रूहानी ताकत मिलती है, वरना नहीं मिलती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नफली अमाल जो होते हैं ना, तो उनकी फिर हमने आपकी आपियों को एक मिसाल से बात समझाई थी, ठीक है, वो उस क्लास में ही वो मिसाल आई थी, वरना उससे पहले उसने खुद नहीं सोची थी कभी। वो क्या थी कि जैसे को आपियों नहीं बल्कि अम्मियों, सॉरी, हाँ ये आंटियों वाली क्लास की बात, कि जैसे कि दो लोग हों, ठीक है, एक जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, या कोई औरत हो जिसको आप सुना ही होगा अल्फाज तो तुमने को पढ़ जाते हैं कानों के अंदर, ब्यूटी क्वीन, ठीक है ना, ब्यूटी क्वीन कहते हैं जी, बहुत खूबसूरत है, मिस यूनिवर्स है या पता नहीं क्या इस किस्म की कोई चीज़, ठीक है, और दूसरी कोई है वो बस नॉर्मल दर्जे की उनके अंदर खूबसूरती है, अच्छी है या अच्छे हैं, खूबसूरत है, यूसुफ अलैहि सलाम जैसी खूबसूरती नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल दर्जे के, हमें नॉर्मल से अच्छे देखने वाले जो है वो, ठीक, तो फराइज जो है ना उनकी ब्यूटी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ब्यूटी क्वीन या ब्यूटी किंग के जैसी, ठीक है, और जो नफली अमाल है ना उनकी खूबसूरती अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में जैसे एक नॉर्मल, एक गुड लुकिंग स्मार्ट बंदा या बंदी उसकी जैसी खूबसूरती हो, ठीक है, तो अब जो है ना फराइज तो है भाई ब्यूटी, ब्यूटी क्वीन या ब्यूटी क्वीन किंग, ठीक है, तो वो तो आपने ऑलरेडी सुन लिया कि भी फराइज असल चीज है, नफले तो उनके ऊपर होती है, लेकिन ये जो अल्लाह की मोहब्बत मिलती है ना, जिन नफलों से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, वो नफलें भी जो होती है ना उनमें भी हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो क्या कि जो एक नॉर्मल ब्यूटी वाले साहब हैं या साहेबा हैं, ठीक है, तो जो फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, तो उनके मामले में ये होता है कि भाई अगर बहुत खूबसूरत कोई इंसान हो तो उसको तो जाना बहुत पसंद कर लेते हैं फॉरेनर, ये तो बड़े बड़े खूबसूरत है, बड़े इनके तो नाक नक्शा बड़ा जबरदस्त है, वो बहुत जबरदस्त, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल ब्यूटी वाले लोग होते हैं ना उनको वो इतना लिफ्ट नहीं कराते, ठीक है, उनको वो इतना लिफ्ट नहीं कराते कि यार ये तो नॉर्मल ब्यूटी वाले साहब हैं, ये तो नॉर्मल ब्यूटी वाले खातून है, ठीक है, लेकिन अगर वो नॉर्मल ब्यूटी वाले अंकल या नॉर्मल ब्यूटी वाली आंटी अगर वो उसके साथ एक और काम भी कर ले ना बड़ा जबरदस्त, तब जो है वो मोहब्बत हो जाती है उनसे, तब वो बहुत ज्यादा अच्छे लगने शुरू होते हैं। वो क्या चीज, अगर उनके अंदर एक और चीज भी आ जाए, इवन नॉर्मल ब्यूटी वाली खातून या नॉर्मल ब्यूटी वाले पास एक नॉर्मल सी है, बदसूरत या बहुत ही कोई डरावनी किस्म की कोई मर्द नहीं है बल्कि नॉर्मल से, तो वो एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे वो भी इक्विवेलेंट टू ब्यूटी किंग या ब्यूटी क्वीन बन जाए। वो कैसे, वो क्या चीज होता मेकअप, मेकअप जो है ना वो सिर्फ सुर्खी पाउडर और लिपस्टिक को नहीं कहते, मेकअप का लफ्ज तो इस्तेमाल किया जा सकता है जवाब में, लेकिन मेकअप इज नॉट जस्ट लिपस्टिक एंड आई शेडो एंड ये वो, एक और भी किस्म के मेकअप होता है, वो क्या, चले रिहान से हमने पहले नहीं पूछा, अपने आप को
इंटीरियर
इंटीरियर, इंटीरियर तो फिर बाहर से नजर नहीं आता ना, बाहर से जो जो चीज नजर आती है, मोहम्मद नमाज पर हम आखिर में पूछ नहीं, आप बताएं जो तो यहाँ पे ऑनलाइन हूँ, तो वैसे तो ये आखिरी बात है, उसके बाद क्लास खत्म कर लें, 3 मिनट ऊपर हो गए। कौन सी ऐसी चीज है जिसका अगर ये भी ख्याल कर ले ना, तो फिर वो भी जो है वो तकरीबन ब्यूटी क्वीन और ब्यूटी किंग जैसे बन जाते हैं, वो क्या चीज? आप क्या कह
माल वगैरह
माल वगैरह? माल वगैरह तो ब्यूटी, जो फिजिकल ब्यूटी वाले हैं ना, वो माल शाल को लिफ्ट नहीं कराते, ठीक है? अखलाक, ठीक है, अच्छे अखलाक, ठीक है ना, ये अच्छे अखलाक अगर उसके साथ कंबाइन हो जाए ना, तो फिर नॉर्मल ब्यूटी वाला शख्स भी जो है वो किंग और क्वीन जैसा बन जाता है लोगों के लिए, ठीक है? तो यही मामला नफिल आमाल का भी, यही मामला नफिल आमाल का, ठीक है? नफिल आमाल जो होते हैं ना, उनकी ब्यूटी ज्यादा नहीं होती, ऐसे ही नहीं खामा खा में नफिल आमाल की ब्यूटी ज्यादा होगी, ठीक है? बल्कि अगर वो मौके की मुनासिबत से हो, ठीक है ना, जहां पर उनकी जरूरत बनती है या जहां पर उनकी जगह बनती है या उनका मकाम बनता है, वहां पर किए जाए ना नफली अमाल, तब वो खूबसूरत बनते, तब वो अल्लाह की मोहब्बत का सबब बनते हैं, वरना नहीं बनते, वरना नहीं उनके अंदर इतनी वाजिबात। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर तहज्जुद नफली इबादत, ठीक है, लेकिन आप जो है वो एक बेडरूम में रहते हैं, एक ही बेडरूम है आपके पास, और उसके अंदर बीवी भी सो रही हैं और बच्चे भी सो रहे हैं, तो अब जो है ना वो आप उठे, मैं तहज्जुद के लिए उठना है, राइट? और फिर मैंने जो है ना वो तहज्जुद पढ़नी है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह की मोहब्बत कमानी है मैंने, लेकिन आप उठते के साथ ही लाइट जलाएं, राइट? जबरदस्त किस्म के आप जो है ना ऊपर बल्ब लगे हैं, बल्ब जलाएं, और फिर उसके बाद जो है ना आप जोर से दरवाजा खोलें, और फिर जो है ना बाथरूम जा रहे हैं, वजू करने के लिए दरवाजा फड़ करके बंद कर रहे हैं, ठीक है, और फिर जो है वो वजू करके वापस कमरे में आ रहे हैं, और अल्लाह अकबर, और फिर उसके बाद आप जो है ना जोरदार किस्म की तिलावत के साथ तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये तहज्जुद क्या है? ये बद अखलाकी के साथ तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यू आर नॉट बींग यानी अबाउट अदर्स, आप बिल्कुल अदर्स को जो है ना वो ख्याल नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पढ़नी है भाई, कोई फर्ज कोई थोड़ी है, आप इस तरीके से तहज्जुद अपनी इम्पोज नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ठीक है ना? हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दीनदार होते हैं, बहुत माशाल्लाह नफली इबादतें भी करते हैं, फराइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी नेकियां जो है ना वो दूसरों पर ठोसना शुरू कर देते हैं, राइट? इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हम उससे भी बढ़ करके दूसरों से डिमांड शुरू कर देते हैं, यू हैव टू अकोमोडेट माई नेकियां, ठीक है ना, मुझे जो है वो नमाजें पढ़नी है, नाउ यू हैव टू अकोमोडेट माई नमाजें, ठीक है ना, तुम्हें जो है वो ख्याल करना है मेरा, मेरी नेकियों का, मेरी नफलों का, ठीक है, और तुम करो बस जो भी करना है करो, बस उसके लिए हलाल खाना है, तो आप लोगों के घरों में जाकर के ना चेकिंग करना है कि भाई ये कहाँ से गोश्त ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, भैया आप ऐसे नहीं जाकर के लोगों के घरों में पूछ सकते हैं कि आप किधर से गोश्त लेते हैं, बंदा बंदा देख के बात करनी होती है, ठीक है? और उसी तरीके से आपको नमाज पढ़नी है या आपको पर्दा करना है, भाई पर्दा करना है आप खुद करें ना पर्दा, आप कहते हैं नहीं पूरे घर को पर्दा करना चाहिए क्योंकि मुझे पर्दा करना है, अब सब पर्दा करें, ये तमाशे जो है ना ये बद अखलाकी होते हैं, ये बद अखलाकी होते हैं, ये दीन अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे कोई अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलने वाली, बल्कि नाराजगी जरूर मिलने वाली है। तो एक तो हो गया फराइज होना जरूरी है, उसके ऊपर नवाफिल होने चाहिए तब अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, और दूसरी ये हो गई कि नवाफिल भी जो है ना वो अखलाक के साथ होने चाहिए, आजिजी के साथ होने चाहिए, इनकसारी के साथ होने चाहिए, नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स टू अकोमोडेट योर नवाफिल, बट रादर यू शुड बी अकोमोडेटिंग टू अदर्स, वी हैव टू बी अकोमोडेटिंग टू अदर्स, ठीक है ना? कि हमारी नवाफिल से मतलब क्या है इसका, कि हमारी नवाफिल से किसी को तकलीफ ना हो रही हो, किसी को नुकसान ना पहुंच रहा हो, ठीक है, चाहे वो दुनियावी नुकसान हो चाहे दीनी नुकसान हो, ऐसा ना हो कि हमारी नवाफिल की वजह से वो दीन से ही उखड़ जाए, ठीक है, कि भाई इन्होंने नवाफिल पढ़नी नहीं है क्या, मुसीबत इन्होंने, इनकी नवाफिल हमारे लिए मुसीबत, चलो यार ऐसे दीन का क्या फायदा जो कि मुसीबत बनता हो दूसरों के लिए, ठीक है? तो नवाफिल जो है ना ये बड़ा, अल्लाह की मोहब्बत फ्री में नहीं मिल रही होती है, ये इधर से टकाटक उमरे कर लिए, उधर से धनाधन जो निभाते पड़ रही, अल्लाह की मोहब्बत मिल गई। नहीं, अल्लाह की मोहब्बत इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है ना, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट थिंग। उसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, नहीं है तो उसके लिए सिर्फ अमाल काफी नहीं है, उसके लिए दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सोच भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिक्र भी करनी पड़ती है, तब अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। ठीक है जी, अभी
अच्छा
उन्होंने पहले बात करा किया तो पहले उससे पूछ लेते हैं। हाँ, इसलिए कि अल्लाह का हक तो फर्ज होता है भाई, नवाफिल तो अल्लाह का हक नहीं बनता, ठीक है, अल्लाह ने अपना हक जो है फर्ज पे ही रखा है, तो बाकी तो फिर उसके बाद अल्लाह के मखलूक का हक आ जाता है, ठीक है, तो उस मखलूक के हकूक के साथ जो है वो अब अल्लाह के फिर मोहब्बत पाने के लिए अगर आप नवाफिल कर रहे हैं तब अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, और फिर वो रूहानी ताकत का सबब बन जाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक, लास्ट खत्म करनी है कि आप बताइए जैसे।
ये वो नहीं क्लासेस पहले पढ़ाऊंगा कि हमारे बच्चे रहते हैं तो अच्छे काम करने चाहिए तो सही करना चाहिए, ऐसे राजी हो जाएगा। इन कुरान को फॉलो भी करना जरूरी है, सिर्फ अच्छे काम में कुरान को फॉलो, अगर बंदे को कुरान नहीं आता तो कैसे पता चलेगा सच्चा है।
ऐसी बात है, अल्लाह ताला के बारे में तो सबसे ज्यादा मैं कुरान मजीद से पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला कौन है क्या है, वालों खुद बताने कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, बेशक कुरान के जरिए से ही अल्लाह ताला की बात को तस्वीर होती है। जजाकुल्लाह खैर, आखिर दावाना तहसीलदार। मेहनत भी होता है।